शांति।
वर्तमान युग को कलयुग कहा जाता है, और अगर इसे घोर कलयुग कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम कह सकते हैं कि ये दुनिया दुख का एक बहुत बड़ा बाजार है, जहां कदम कदम पर दुख देने वाले मिलेंगे, चाहे मन से दुख देने वाले, चाहे वचन से दुख देने वाले, चाहे कर्म से दुख देने वाले मिलेंगे। कर्म से दुख देने वाले तो हम देख सकते हैं, कोई आप पर प्रहार करने की कोशिश करेगा, कोई आपको हर प्रकार से दुख देने की कोशिश करेगा, कष्ट देगा, तकलीफ देगा, और वचन से भी दुख देने वाले बहुत मिलेंगे, अनेक अपशब्द सुनाने वाले मिलेंगे, कटु वचन सुनाने वाले मिलेंगे, गालियां देने वाले मिलेंगे, आपकी बुराई करने वाले मिलेंगे। और तीसरे हैं जो मन से दुख देते हैं, शायद उनका आपको पता नहीं चलता होगा, क्योंकि वो मन में आपके लिए बुरा सोचते हैं, लेकिन ये अवश्य होता है कि अगर मेरे लिए कोई मन में भी बुरा सोचता है तो भी उसका दुख हमें पहुंच सकता है। तो देखा जाए कि मन, वचन और कर्म से दुख देने वाले अनेक मिलेंगे, कदम कदम पर मिलेंगे, लेकिन हमें क्या करना है? क्या हमें उस दुख को स्वीकार करना है? समझदारी तो यही कहती है कि कोई व्यक्ति अगर मुझे कुछ देने की कोशिश करे और मैं उसे नहीं लूं तो वो चीज मेरे पास नहीं आएगी। तो अगर मुझे कोई दुख देने की कोशिश करता भी है परंतु मैं उस दुख को स्वीकार ही न करूं तो ये आवश्यक नहीं कि हम दुखी होंगे। लेकिन हम दुख को स्वीकार कर लेते हैं और फिर उसकी चिंता करते रहते हैं, और चिंता चिता समान बन जाती है। मनुष्य मरने के बाद तो एक ही बार चिता पर चढ़ता है, अर्थी चढ़ती है, लेकिन जीता जागता इंसान चिंता की चिता पर अनेक बार चढ़ता है। और कितनी बातों की उसे चिंता होती है, अपने तन की चिंता, परिवार की चिंता, समाज की चिंता, व्यापार की चिंता, मानिए कि जैसे चिंताओं का बोझ उसने अपने सिर पर लादा हुआ है। कई बार चिंता हम खामखा भी करते हैं, बात होती नहीं है कुछ भी, लेकिन हम चिंता करके उस बात को बढ़ा देते हैं। मान लीजिए हमने अनुमान ही लगा लिया, किसी पर वहम ही कर लिया, या किसी से हमारा शक है, किसी पर शक हो जाता है, तो अनुमान, वहम, शक ये भी चिंता के कारण बन जाते हैं। और हम अनुभव कर सकते हैं कि चिंता करने से कितना नुकसान होता है। हमारे स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा नुकसान होता है। आज हम देख रहे हैं 80% जो भी शारीरिक रोग हैं, उन सब का कारण कोई न कोई मानसिक तनाव, चिंता, भय आदि के कारण होता है, और फलस्वरूप दिनों दिन अनेक बीमारियां बढ़ती जा रही है जिनका कोई इलाज भी दिखाई नहीं देता, और इन सब का कारण है चिंता। तो तो हम अपने स्वास्थ्य पर उसका असर लाते हैं। दवाइयां लेने पर भी हमारी बीमारी दूर नहीं होती, क्योंकि चिंता से हम मुक्त हुए नहीं। और हम जानते हैं कि कोई भी डॉक्टर अपने मरीज को सबसे पहले यही कहेगा कि आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन चिंता कैसे न करे वह भी सिखाना आवश्यक है। केवल कह देने से कि चिंता नहीं करो सब ठीक हो जाएगा, इससे चिंता दूर होगी नहीं। लेकिन चिंता दूर करने के लिए क्या विचार लाएं, क्या सोचें, क्या मन में संकल्पों का हम परिवर्तन करें, इन बातों को समझने से ही हम चिंता से मुक्त हो सकते हैं। सबसे पहले तो चिंता आरंभ ही होती है क्या प्रश्न से या क्यों प्रश्न से। हम कहते हैं ऐसे क्यों होता है, ये मेरे से ही होता है, ये सब क्या हो रहा है। तो जहां क्या और क्यों इस प्रकार के प्रश्न हमारे मन में आते हैं, जिसको हम कई बार कहते हैं क्यों की क्यों लग जाती है, तो मन में अनेक प्रकार का चिंतन चलने से वह चिंता का रूप ले लेती है। हम कई बार खां खां के भी अनुमान लगाते हैं। हमें अभी तक किसी घटना का पता नहीं चला है, लेकिन हम अनुमान लगा लेते हैं कि अवश्य ऐसे हुआ होगा। मान लीजिए हमारा ही बच्चा घर में स्कूल से नहीं लौटा, 10-15 मिनट बीत गए, आधा घंटा बीत गया, अभी तक लौटा नहीं, तो मन में अनुमान लगना शुरू हो जाएगा, क्यों नहीं बच्चा घर में लौटा, क्या हुआ, कहीं कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं अपहरण तो नहीं हो गया, कहीं उसको किसी ने भगा के वो कोई ले तो नहीं गया, कहीं उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई। मानो कि माँ अनुमान लगा करके चिंता की चिता पर पहले खुद ही जलती है, और कुछ समय के बाद बच्चा खेलता खेलता हंसता हंसता घर आता है और माँ उसको चिपट पड़ती है और कहती है बेटा मैंने क्या सोच लिया तुम्हारे लिए। तो देखिए अनुमान की कितनी बड़ी बीमारी है। इसी प्रकार वहम भी कम नहीं, छोटी छोटी बातों में वहम होता है, अगर ये करूंगा तो शायद ये न हो जाए, अगर ये नहीं करूंगा तो शायद ये हो जाए, अर्थात कदम कदम पर हम वहम करते रहते हैं, जिसको इंग्लिश में सुपरस्टिशन कहते हैं। और वहम करके छोटी बात को भी इतना बढ़ा देते हैं, जैसे कि न जाने कितना बड़ा परीक्षाओं का परिस्थितियों का पहाड़ हमने खड़ा कर दिया है। इसी प्रकार लोगों पर शक, शक भी एक बहुत बड़ी बीमारी है जिससे चिंता होती है। हम शक करते हैं कि ये व्यक्ति अवश्य मेरे लिए बुरा ही करेगा, हालांकि दूसरे व्यक्ति के अंदर मेरे प्रति कोई बुरी भावना न भी हो, लेकिन हम शक करके अपने मन को चिंतित बना देते। और अनुभव है कि शक करने से दूसरे व्यक्ति में अगर वो संकल्प नहीं भी होगा तो भी उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि हमारे मन के वाइब्रेशंस उस तक अवश्य पहुंचते हैं। तो ये अनुमान, वहम, शक, ये इतने बड़े मानसिक रोग हैं जिसके फलस्वरूप आज इंसान चिंता की चिता पर दिनों दिन जलता जा रहा है। हम कैसे मुक्त हो इस चिंता से? अवश्य समस्याएं आएंगी, लोग आपको परेशान करेंगे, तंग करने की कोशिश करेंगे, धोखा भी देंगे, लेकिन हमें उन परिस्थितियों में सकारात्मक सोचना होगा। कैसे हम सकारात्मक सोचें, उसके लिए कुछ बातें हम आपको देना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो हम सदा यही सोचें कि जो हमारे भाग्य में होगा वो चीज हमारे से कभी नहीं छूट सकती है। दुनिया की कोई भी शक्ति मेरे भाग्य को छीन नहीं सकती। चाहे मेरे हाथ से कोई वस्तु छीन ले, चाहे मेरी प्रॉपर्टी छीन ले, लेकिन जो मेरे भाग्य में होगा उसे कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता। और साथ साथ जो मेरे भाग्य में नहीं होगा उस दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे दे नहीं सकेगी। कई बार हम सोचते हैं कि हम फलाने व्यक्ति को ये दे वो दे, लेकिन देने के बावजूद भी वह व्यक्ति उसका सुख नहीं ले पाता है, क्योंकि उसके भाग्य में ही नहीं है। और कई बार हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति को हम ये नहीं दे और उसे अपने आप कहीं न कहीं से मिल जाती है। तो जिसके भाग्य में जो चीज होगी, हम चाहते हुए भी सोचते हुए भी कि हम नहीं दे, पर उसे मिल जाएगी। और अगर किसी के भाग्य में नहीं है तो हमारे देने पर भी वह व्यक्ति उस वस्तु का सुख नहीं ले पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि हरेक का भाग्य निश्चित है। हम किसी का भाग्य न बना सकते हैं न बिगाड़ सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि हमारे कारण ही इसका भाग्य ऊंचा हुआ है, अगर मैं नहीं होता तो शायद ये व्यक्ति कब का मर जाता होता, इस व्यक्ति का कितना नुकसान हुआ होता, ये मेरे कारण ही इसका भाग्य उज्जवल हुआ है। वास्तव में इस प्रकार से सोचना भी गलत है। इस पर याद आती है एक कहानी कि एक राजा था जिसकी 3 बेटियां थी। अपनी बेटियों से राजा ने पूछा कि आप किसका खा रहे हो, तो 2 बेटियों ने तो कहा कि हम पिता का खा रहे हैं, लेकिन एक बेटी ने कहा कि हम अपना भाग्य खा रहे हैं। तो पिता को गुस्सा आया और बेटी को अपने राज्य से निकाल दिया। लेकिन उस बेटी के भाग्य में तो बहुत कुछ अच्छी बातें लिखी हुई थी, और जैसे ही वह उस राज्य से बाहर गई तो किसी दूसरे राज्य के राजकुमार ने अपने राज्य में उसको ले लिया और उसे विवाह किया और वह उस देश की रानी बन गई। तो देखिए किसका भाग्य इंसान खाता है। कोई सोचे हम इसको भाग्य देते, लेकिन न कोई किसका भाग्य ले सकता है न कोई किसका भाग्य इसे दे सकता है। हम अपने ही कर्मों से अपना भाग्य बनाते हैं। अगर ये हम सोचें तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगी। दूसरी बात, हम मन में यही सोचें कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो आगे होगा वह और भी अच्छा होगा। चिंता क्यों होती है? क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि आगे बुरा होगा, या पहले बुरा हुआ था या बुरा हो रहा है, लेकिन ये अच्छा और बुरा ये तो सापेक्ष शब्द है। किसका अच्छा किसका बुरा? हो सकता है जो मुझे बात महसूस हो रही है कि ये अच्छा हो रहा है वह दूसरे के लिए बुरा हो रहा हो। तो किसे अच्छा कहा जाए और किसे बुरा कहा जाए, इसको भी हमें समझना है। जिसमें सबका कल्याण समाया हुआ है, वास्तव में वो दिखाई भल दे कि बुरा है, लेकिन उसमें अच्छाई भरी हुई है। तो जहाँ कल्याण है वहाँ अच्छा है, जहाँ अकल्याण है अवश्य वह बुरा है। तो जो कुछ हुआ उसमें कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ था। हम तो सदा ही सोचते हैं कि जो हुआ कल्याण भरा था, जो हो रहा है उसमें भी कल्याण है, और जो होगा उसमें भी कल्याण ही होगा, इसीलिए जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा होगा। इस पर याद आती है एक और कहानी अकबर और बीरबल की। अकबर और बीरबल कुछ सिपाहियों के साथ किसी जंगल में जा रहे थे, और जंगल में जाते समय एक शिकार हाथ आया राजा के, लेकिन जैसे ही उसने अपनी तलवार निकाली उस शिकार को करने लिए तो अचानक उसकी उंगली कट गई और फलस्वरूप उस उंगली से खून निकलने लगा। बड़ा दुखी हो गया। बीरबल ने कहा, राजन कोई बात नहीं, इसमें भी कोई कल्याण होगा। ये शब्द सुनते ही राजा को गुस्सा आ गया और अपने सिपाहियों को कहा कि अब बीरबल को जेल में डाल दो। वो अकेले गुस्से के मारे जंगल के भीतर चला गया और जंगल में कुछ अघोरी लोग उसे मिल गए, जिन्होंने उसे पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए और उस सरदार ने समझा कि यह बलि बहुत अच्छी होगी, लेकिन बलि लेने से पहले उसके शरीर का परीक्षण किया और पता चला कि उंगली कटी हुई थी। लेकिन बलि वही स्वीकार होती है जो अखंड हो, खंडित बलि स्वीकार नहीं होती। इसीलिए उस राजा को छोड़ दिया गया और वह व्यक्ति राजा भागता भागता अपने देश में पहुंचा, बीरबल को जेल से निकाला, कहा, माफ करो बीरबल, हमने बहुत बड़ा अपराध किया, आपको हमने जेल में डाला, कितने बड़े कल्याण की बात हुई, अगर ये उंगली नहीं कटती तो आज मेरी मृत्यु हो जाती। तो बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं राजन, इसमें भी कल्याण था, आपने मुझे जेल में डाला, इसमें भी कल्याण भरा हुआ था, क्योंकि अगर आपकी बलि नहीं चढ़ती होती तो मैं तो आपके साथ ही था, तो मेरी बलि चढ़ जाती होती इसकी बजाय। इसीलिए जो होता है उसमें कल्याण है, हर बात में कल्याण है। अगर ये बात हम सदा सोचेंगे तो चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। और साथ साथ ये भी हम सोचें कि जो जीवन में तूफान आते हैं ये तोहफा के समान है, एक सौगात है, एक गिफ्ट है। जैसे आप नदी में या सागर में नाव में बैठे हैं और अचानक तूफान आता है सागर में, तो वह तूफान हो सकता है आपके नाव को किनारे ले जाए। ये जरूरी नहीं है कि तूफान आपको डुबो देगा, लेकिन आपको किनारे भी ले जा सकता है। इसी प्रकार जीवन में जो कठिनाइयां आती है, तूफान समान विघ्न आते हैं, ये हमारे अनुभव को बढ़ाने के लिए आते हैं, मानो कि हमें अनुभवी बनाने के लिए आते हैं। आज बुजुर्ग व्यक्ति यही कहते हैं अपने बच्चों को, युवकों को, कि बेटा हमने जीवन निकाली है, बहुत अनुभव किए हैं, हमारे बाल यूं ही नहीं पके हैं, बहुत अनुभव से हम जीवन बिता चुके हैं, इसीलिए हमें मालूम है क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्योंकि अनुभव हम जैसे करते जाते हमारी समझ बढ़ती जाती है। किसी ने ठीक कहा है, अ बैड जजमेंट लीड्स टू एन एक्सपीरियंस। अगर आपने जजमेंट बुरी की, निर्णय बुरा लिया, तो हो सकता है आप महसूस करेंगे कि कुछ बुरा हुआ, लेकिन इसमें आपका अनुभव बढ़ा। और एन एक्सपीरियंस लीड्स टू अ गुड जजमेंट। अगर आप अनुभवी हैं, पहले आप अनुभव कर चुके हैं, तो दोबारा आप उस बुरे एक्सपीरियंस में नहीं जाएंगे, आपकी जजमेंट अच्छी ही होगी। तो अगर एक्सपीरियंस बुरा हुआ भी तो उसमें भी कल्याण था, क्योंकि आगे आप उस एक्सपीरियंस से या अनुभूति से बच जाएंगे। दूसरी बात है, हम सदा ये भी सोचें कि इस संसार में जो कुछ होता है कोई भी नई बात नहीं है। कहा जाता है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। कोई अनहोनी बात हो रही हो तो इंसान चिंता भी करे, लेकिन कोई अनहोनी बात तो हो नहीं रही है। जैसे आपने कोई ड्रामा देखा या फिल्म देखने जा रहे हैं और आपको कहानी पहले से ही सारी मालूम है, तो चाहे आप उस समय फिल्म भी देखेंगे, सस्पेंस होगा उस समय दृश्य में, लेकिन आपको कोई ख्याल नहीं चलेगा, क्योंकि आपको पता है ये कहानी कैसी है, इसका अंत क्या होगा। तो सस्पेंस होते हुए भी आपको वो सस्पेंस या ट्रेजिक लगेगा नहीं। इसी प्रकार हम इस संसार के लिए भी यही कहते हैं कि जो कुछ होता है कोई नई बात नहीं है, ये बना बनाया एक खेल है, एक ड्रामा है। ये संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं या जो कुछ हो रहा है, ये नई बात नहीं है। अगर ये नई बात होती तो कई ऐसे लोग जिन्होंने कई सौ साल पहले भविष्यवाणियां की है और वो आज हम देख रहे हैं फलीभूत हो रही है, तो सिद्ध है कि भविष्य भी निश्चित है, लेकिन हमें उसको समझ करके उसी अनुसार चलना होगा। जैसे हमें पता है कि बारिश की मौसम आने वाली है, ये पहले से ही निश्चित है, तो हम बारिश की मौसम का इंतजार करेंगे, हम उसके लिए चिंतित नहीं हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले से इंतजाम भी कर लेंगे ताकि जब बारिश की मौसम आए तो हम उसमें सुरक्षित रहें। ठंडी की मौसम आती है तो हम चिंतित नहीं हो जाते हैं, लेकिन गर्म वस्त्र अपने साथ रखते हैं ताकि हम अपने आप को बचा सकें। तो चिंता करने से तो वास्तव में कुछ भी नहीं होगा। चिंता करना कई लोगों की एक ऐसी आदत बन जाती है कि जिस दिन उनको कोई चिंता नहीं होगी तो शायद इसलिए चिंता हो जाती है कि आज चिंता क्यों नहीं है मुझे, क्योंकि चिंता करना भी एक उनका संस्कार बन जाता है। परंतु हम हमेशा निश्चिंत रहें, यह सोचें कि परमात्मा मेरे साथ है। जिसका साथी भगवान है उसको कोई भी रोक नहीं सकता। हम किसी नाव में बैठे हैं या कार में बैठे हैं और ड्राइवर बहुत जबरदस्त है, होशियार है, भले रास्ता कितना भी बुरा क्यों न हो, खतरनाक क्यों न हो, लेकिन अगर ड्राइवर होशियार है तो कार में बैठने वालों को चिंता नहीं होगी। उनको मालूम है कि ये ड्राइवर हमें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देगा। हमारे मार्ग में कोई विघ्न अगर आएंगे भी तो भी ड्राइवर उसे पार कर लेगा। इसीलिए परमात्मा हमारा रक्षक है, ये हम कभी ना भूलें। परमात्मा केवल इतना ही कहते हैं कि तुम हिम्मत रखो, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हमारी हिम्मत हो तो परमात्मा की मदद हमें अवश्य प्राप्त होगी। हम एक कदम हिम्मत का आगे बढ़ाएं तो परमात्मा की 10 कदमों की मदद हमें अवश्य प्राप्त होगी। हम तो कहते 10 क्या, 100 कदम, 1000 कदम ईश्वर की मदद हमें मिलती है, लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि हिम्मत भी हमें भगवान ही दे, क्योंकि हम हिम्मत भी हार जाते हैं। हमने कई लोगों को देखा है जिनमें जरा भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं, तो सोचते हैं बस इसे तो मर जाना ही अच्छा है, क्या जरूरत है इस संसार में जीने की, क्या मिलेगा इस संसार से, बस हम तो मर जाएं, और आत्महत्या करने का अंतर में सोच चलता है। लेकिन आत्महत्या करना, जीव घात करना, ये भी वास्तव में देखा जाए कमजोरी है, ये कायरता है। क्यों नहीं हम संसार के परीक्षाओं को या समस्याओं को झेल सकते हैं? इसका कारण है अंतर में चिंतन का जो श्रेष्ठ स्वरूप होना चाहिए वो चिंतन प्राप्त नहीं है। तो जब हम आत्मा की अनुभूति करते हैं, परमात्मा की अनुभूति करते हैं, परमात्मा के साथ का अनुभव करते हैं, तो महसूस होता है कि विजय जैसे निश्चित है, क्योंकि भगवान मेरे साथ है। जिसके साथ भगवान हो उसकी विजय न हो ये कभी हो ही नहीं सकता है। इसीलिए अंतर में एक दृढ़ संकल्प करें, अंतर में एक ऐसे संकल्प को लाएं, सकारात्मक संकल्पों को लाएं कि विजय हमारी होगी ही, इसलिए हमें चिंताओं से मुक्त होना है, तब हम ये जीवन श्रेष्ठ जीवन, सुखी जीवन बना सकेंगे। ओम।